ओम ग्रंथ श्री रामचरित मानस में उत्तरकांड में एक प्रसंग आता है जहां काकभूषण जी वरुण जी को उपदेश दे रहे हैं। वहां आया है
मोह सकल व्याधिन कर मूला दिनते पुनि उपजही बहुसूला।
मोह सारी व्याधियों की जड़ है। मोह सारी व्याधियों की जड़ है। उसी से बहुत प्रकार के शूल अर्थात कांटे यानी दुख उत्पन्न होते हैं। ये जो मोह है, कई बार ये शब्द हम सुनते हैं परंतु इसका निर्णय नहीं हो पाता इस मोह के कारण दुख क्यों उत्पन्न होता है। यदि सरल शब्दों में समझा जाए तो ये जो हमारी देह है या जो शरीर है, इस शरीर के अंदर मैं निवास करता हूं, यानी मैं इस देह का मालिक, ये देह मेरी। लेकिन क्योंकि हम संसारियों के बीच में पलते हैं, पूर्ण गुरु की बात हमने कभी समझने की कोशिश नहीं की या उसका सानिध्य नहीं मिला, उसका मार्गदर्शन नहीं मिला, इसलिए मेरे इस निर्णय में क्या गलती है मुझको ये कभी नहीं पता लग पाया। ये देह मेरी है, इसमें कोई गलत बात नहीं। मैं इसका मालिक हूं, ये भी कोई गलत बात नहीं। परंतु मैं देह हूं, इसी का नाम मोह है, इसी का नाम अज्ञान है। तो मात्र एक गलती करने से, कहते कि हजारों प्रकार के दुख, हजारों प्रकार के मानसिक क्लेश में मैं डूबा रहता हूं और सारी जिंदगी बीत जाने के पश्चात भी इन दुखों का, इस बेचैनी का अंत नहीं हुआ। तो जितनी भी अध्यात्म विद्या है, जितना भी सत्पुरुषों का जीवन है और जितना भी उनका मार्गदर्शन है, उसका प्रारंभ यहीं से होता है कि ऐ जीव, ऐ नर, तू इस मोह रूपी अज्ञान को समझ। इसके बिना समझे तेरे जीने की दिशा ठीक नहीं हो सकती। तो सारे दुखों की जड़ ही मेरा यह अज्ञान है। जब तक ये अज्ञान मेरा दूर नहीं होता, मेरे दुखों का अंत नहीं हो सकता। इसीलिए जो सही सत्संग है उसको समझना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि संसार में जो आम सत्संग होते हैं उसमें तो व्यक्ति बड़े अच्छे अच्छे कहानी किस्से सुनता है, बड़े अच्छे अच्छे राग सुनता है, बड़े अच्छे अच्छे कीर्तन करता है। उस सब कुछ सत्संग करने के पश्चात भी उसके दिमाग में यह बात आती ही नहीं कि मैं जो अपने आप को देह समझ रहा हूं, इस अज्ञान को धारण करके ये सारा का सारा सत्संग मेरा निरर्थक है, इसका कोई अर्थ ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि जब तक पूर्ण गुरु का सत्संग ना मिले, पूर्ण गुरु पर आपकी श्रद्धा ना हो, तब तक उसकी इस बारीक बात को आप समझने की दिल से कोशिश नहीं करते। ऊपर से सत्संग कितना भी कर लीजिए, उसका कोई लाभ आपको नहीं मिलता। ये तो हो सकता है कि चार बुराइयां आपकी छूट जाए, चार गलत काम आपके छूट जाए, लेकिन आप दुख से नहीं बच सकते, अज्ञान से नहीं बच सकते। सारा जन्म आपका निरर्थक बीत जाता है, कुछ भी आपको प्राप्त नहीं। तो इसीलिए रामायण कह रही है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये जो मोह है जीव का ये सारी व्याधियों का की जड़ है। और इसी से कहते हैं तिन ते पुनि उपजही बहुशूला, विभिन्न प्रकार के दुख विभिन्न प्रकार के कांटे इसी मोह से उत्पन्न होते हैं, इसी अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। तो जब तक ये फंडामेंटल चीज मेरी समझ में ना आए तब तक मैं ईश्वर के मार्ग पर ठीक प्रकार से कैसे चल सकता। तो जो कुछ भी मैं अध्यात्म मार्ग तय करता भी हूं उससे मेरा कल्याण नहीं हो पाता, मेरे दुख वैसे ही वैसे बने रहते हैं, कुछ आदतें मेरी सुधर जाती हैं। तो एक बार महाराज को किसी प्रेमी ने पत्र लिखा, महाराज जी मुझको संसार नाशवान दिखाई पड़ता है, सार का संसार नाशवान है, परिवर्तनशील है, दुखरूप है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तो महाराज जी ने उस प्रेमी को उत्तर लिखा कि प्रेमी ये अच्छी बात है कि तुमको ये संसार नाशवान दिखाई पड़ता है, परंतु इससे अच्छी स्थिति यह है कि तुमको अपना शरीर नाशवान प्रतीत, अर्थात तुमको अंदर ये याद बनी रहे कि ये देह नाशवान है, किसी वक्त भी मृत्यु को प्राप्त हो जाए। अब बताइए कि गुरु क्या कह रहा है और ये बात वो क्यों कह रहा है। देह दुख में नहीं है, देह के कारण मैं दुख में हूं। आप लाल रंग का कपड़ा पहन लिए, पीले रंग का पहन लिए या सफेद रंग का पहन लिए, देह कुछ कहती है क्या? जिस प्रकार एक साल का बालक हो उसको किसी रंग का कपड़ा पहन दिए वो कुछ नहीं कहता, लेकिन माता पिता कहते हैं इसमें ये अच्छा नहीं लग रहा है इसको लाल रंग का कपड़ा पहनो। तो उसी प्रकार देह कुछ नहीं कहती, मैं ही कहता हूं इस देह पर ये रंग अच्छा नहीं लग रहा। तो जिस प्रकार बालक मां से अलग वस्तु है उसी प्रकार मेरी ही देह मुझसे अलग वस्तु है, लेकिन सत्य यह है कि मैं क्योंकि बिना देह के कभी रहता नहीं हूं इसलिए मेरे अंदर यह गहरा ज्ञान हमेशा बना रहता है कि मैं देह हूं। लेकिन गुरु ने एक काम करके दिखाया, वो क्या था? उसने इस देह के अंदर रहते हुए इस देह के मोह से छुटकारा प्राप्त कर दिया। अर्थात उसको एक पल भी ये मोह नहीं, ये अज्ञान नहीं कि मैं देह हूं, क्योंकि जब प्रभु के आनंद में ये जीव मग्न होता है जो कि इस देह के अंदर ही मौजूद है, उस प्रभु प्रेम में जब ये जीव लीन होता है या यूं कहें कि आत्मा में स्थित होता है, उस समय जीव इतना आनंदित होता है कि इस देह का लेश मात्र भी उसको होश नहीं है। जब देह का होश पूरी तरह से गायब है लेकिन आनंद इसका बना हुआ है, और वो आनंद जब टूटता है, देह का जब होश आता है, तब इस जीव को पता लगता है कि ये देह कितना बड़ा बंधन है। वो उस आनंद को बार बार प्राप्त करना चाहता है और देह से मुक्त होना चाहता है। तो ये अनुभव की बात है, ये प्रैक्टिकल बात है, ये कोई थ्योरी नहीं। महाराज जी जब बैठे होते थे, प्रेमी जब अर्धगोले में उनके आगे बैठे होते थे, महाराज जी की समाधि टूटती थी तो तो कहते थे प्रेमी कोई प्रश्न करो। यदि कोई प्रेमी प्रश्न नहीं करता था, दो तीन मिनट किसी ने प्रश्न नहीं किया, तो पुनः वो अपनी सहज स्थिति में, सहज समाधि में प्रवेश कर जाते। उनको फिर इस शरीर का और संसार का और प्रेमियों का कोई होश नहीं होता। कई बार तो ऐसा हो जाता था कि प्रेमी बैठे हैं, आधा आधा घंटा निकल जाता था, 15 मिनट निकल जाते थे। पुनः जब महाराज जी की समाधि टूटती थी, तब वो जागृत हालत में जब आते थे तो पुनः कहते थे प्रेमियों कोई प्रश्न करो। तो गुरु की हालत देखकर ही ये बात प्रेमियों को पता लगती थी कि अंदर कोई ऐसी अपार आनंद की वस्तु है जिसके सामने देह और संसार का आनंद कुछ भी नहीं। तो उस आत्मा में, उस ईश्वर में जीवन है और इस देह के अंदर मौत है। उस आत्मा में आनंद है और इस देह के अंदर दुख है, बेचैनी है। तो सत्पुरुष जब कोई बात कहते हैं या लिखते हैं तो वो कोई कहानी किस्सा नहीं लिखते। जो उनका अनुभव है, जो मेरे बारे में सत्य है, उसी का बयान वो करते। तो इसीलिए माँ जी कहते थे प्रेमी ये मनुष्य जन्म इसलिए मिला है कि इस देह के मोह से तू मुक्त हो जाए, और कोई उद्देश्य नहीं है इस जीवन। बाकी संसार में तेरा ये शरीर कब तक जिएगा, ये प्रभु ने जन्म लेते ही निर्धारित कर दिया है। और जीने के लिए जो भी आवश्यक चीजें हैं वो भी इसको जरूर प्राप्त होंगी। तू उसकी चिंता कर या ना कर, लेकिन ये सारी प्रकृति तेरे शरीर को जीवित रखेगी, क्योंकि सारी प्रकृति प्रभु के अधीन है, तेरे अधीन नहीं है। लेकिन मैं अपनी ही अज्ञानता के कारण पूरा का पूरा जन्म, इतना कीमती जन्म, इस देह की चिंता में ही व्यतीत कर देता हूं। ईश्वर की चिंता मुझे होती ही नहीं। जिस काम को करने आया था वो तो पूरी तरह से छोड़ बैठा हूं, और जो काम प्रभु ने करना था, इस देह की रक्षा करना, उसमें मैं सारा जन्म गुजार देता हूं। इतनी बड़ी मूर्खताई करके मैं ये मानव जीवन व्यतीत करता हूं, मानव जीवन जीता हूं। तो इसीलिए जब तक पूर्ण गुरु का आसरा ना मिले, उसकी बात समझने का मौका ना मिले, उसके वचन पर हमारी गहरी श्रद्धा ना हो, तब तक कभी भी हम उनकी बातों को गहराई से समझने की कोशिश नहीं करते। ये समझते ही नहीं कि गुरु की बात समझे बिना मेरी जिंदगी बर्बाद है। यदि मेरा कल्याण है तो गुरु की बात समझने में ही है। यदि ये श्रद्धा हो तब ये जीव पूरी लगन से, पूरी मेहनत से उस बात को समझकर उस पर अमल करने की कोशिश करता है। तो गुरुदेव कहते हैं, लिखते हैं उस पत्र में, कहते हैं कि संसार की विनाश को प्रतीत करने पर भी शारीरिक भोगों की आसक्ति से निर्बंधन नहीं हो सकता है। यानी शरीर की विनाश को निश्चय बुद्धि नहीं करती है और ना ही भोग वासना से असंग होने का यत्न करती है। यह मोह रूपी जाल बड़ा दुस्तर है, इस वास्ते हर वक्त शरीर की नाश को निश्चय करके तमाम इंद्रियों के भोगों की आसक्ति से निर्बंधन होकर एक नाम के परायण अचल होना ही इस दुर्मत जाल से छुटकारा देने वाला और जीवन स्वरूप परम तत्व में निःचलता की प्राप्ति के देने वाला सत यत्न है। यानी शारीरिक सुखों से उपरस होकर के केवल नाम चिंतन में बुद्धि को बार बार एकाग्र करके तमाम शारीरिक कर्मों के द्वंद रूपी फल प्रभु आज्ञा में समर्पण करके होना ना होना से अचिंत होकर के नित आनंद अविनाशी शब्द में अंतर में निश्चल होना ही सत स्थिति है, और यही योगारूढ़ अवस्था है। तो इस मोह का जाल यदि भंग करना है तो सीधी सी बात है, सबसे पहली चीज जो मैंने याद रखनी है वो ये याद रखना है कि ये देह नाशवान है, किसी भी पल ये मृत्यु को प्राप्त हो सकती है। ये देह जब मृत्यु को प्राप्त होगी तो मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं होऊंगा, ना मेरा मन मृत्यु को प्राप्त होगा। अर्थात जो कुछ भी स्वभाव, जो कुछ भी आदतें और जो कुछ भी मेरा कर्म फल है, वो मेरे ही मन में सुरक्षित बच जाता है और ये मन लेकर मैं नई देह में प्रवेश कर जाता हूं, या नई देह का मेरे स्वभाव के अनुसार, मेरी कामना के अनुसार नई देह का निर्माण प्रभु कर देते हैं और मैं उस देह में पुनः कैद हो जाता हूं। तो ये जन्म मात्र ऐसा है कि इस मानव जन्म में यदि पूर्ण गुरु पर विश्वास आ जाए तब इस विज्ञान को मैं सीख सकता हूं। हर मनुष्य जो भी संसार में आया है वो अपने लिए ही जी रहा है, किसी दूसरे के लिए नहीं जी रहा, वो अपने ही सुख अपने ही आनंद के लिए जी रहा है। लेकिन मोह के कारण वो बातें ऐसी बनाता है कि मैं परिवार के लिए जीता हूं, मैं समाज के लिए जीता हूं, मैं देश के लिए जीता हूं। मेरे अंदर यदि कोई योग्यता है, कोई काबिलियत है, तो मैं सारा जन्म उनके कल्याण के लिए खर्च कर देता हूं। लेकिन सत्पुरुष कहते हैं ये तेरा गहरा मोह है जो तुझको दूसरों के लिए जीने की के लिए मजबूर कर रहा है, ये तेरा गहरा मोह है। वो सेवा की बात तो करते हैं लेकिन निष्काम सेवा की बात करते हैं, और निष्काम सेवा तभी इस जीव से बन सकती है जब वो इस मोह से मुक्त हो कि मैं देह हूं। इस मोह से मुक्त हो तभी वो निष्काम सेवक बन सकता है। इसीलिए जिसको अंदर ईश्वर का निरंतर होश नहीं, जिसके अंदर ईश्वर की निरंतर याद नहीं बनी रहती है, वो इस मोह से कैसे मुक्त हो सकता है। इसीलिए इस जीव का, या यूं कहें कि इस मनुष्य का जितना भी सामाजिक कर्म है, जितना भी समाज के कल्याण के लिए वो कर्म कर रहा है, उसको समता विलास महाराज जी ने देह परायणता करके लिखा है। उन्होंने लिखा है कि देशभक्ति भी देह परायणता है। इसका मतलब ये हो गया सीधा सा सीधा कि ये मनुष्य जन्म अपने स्वरूप को जानने के लिए मिला है, जिसको हम कहते हैं कि ईश्वर दर्शन के लिए मिला है, या आत्मा को जानने के लिए मिला है, या आत्मा की खोज करने के लिए। तो ये खोज आप तभी कर सकते हो जब आप पहले ये स्वीकार करो कि संसार में मैं कुछ भी क्यों ना कर लूं, चैन मुझको नहीं मिल सकता। दुख लेकर मैं पैदा हुआ हूं, दुख लेकर ही जी रहा हूं, और दुख लेकर ही संसार से विदा हो जाऊं। शरीर के साथ मेरी मौत नहीं होगी, यदि मौत हो जाती फिर डरने की कोई बात ही नहीं, फिर क्या करना है ईश्वर भक्ति का, जैसे मन चाहे जीवन व्यतीत कर। लेकिन मेरे बारे में सत्य है कि देह की मौत के साथ मेरी मौत नहीं होती, मैं बच जाता। जिसके लिए गीता में कहा गया कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण कर लेता है, उसी प्रकार ये जीव पुरानी देह त्याग कर नई धारण कर लेता है। बस मात्र इतनी सी बात। तो इसीलिए इसका प्रारंभ कहां से होता है, इस ज्ञान का, इस मार्ग का प्रारंभ होता है, सबसे पहले मैंने ये समझना है कि देह नाशवान है, किसी भी पल ये छूट जाएगी, फिर ये मनुष्य जन्म का मुझको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं। इसीलिए आयु के रहते, इस देह के रहते, मैं गुरु की बात मानकर, उसको सीखकर, उस आत्मा की खोज में लग जाऊं, या ईश्वर स्मरण में लग जाऊं। इसलिए महाजी कहते थे, प्रेमी इस देह को जो नाशवान समझता है वो इंद्रिय भोगों को बढ़ाने के लिए नहीं जीता, इंद्रिय भोगों को मात्र इतना ही भोगता है कि देह की रक्षा होती रहे, और अंदर से वो उसकी बुद्धि इतनी होश में होती है कि अंतर्यामी ईश्वर को वो निरंतर याद करता रहता है, जिसको महाजी कह रहे हैं प्रेमी सिमरन करना जरूरी है। ज्यादा नहीं कर सकते तो सुबह और शाम दो वक्त ईश्वर का सिमरन करना लाजमी है। कई लोग कहते हैं कि साहब चलते फिरते हम ईश्वर की याद करते रहते हैं, लेकिन महाजी लिखते हैं संत रविदास में कि प्रेमी जो दो वक्त बैठकर ईश्वर की याद की जाती है इसका मन पर गहरा असर होता है, इसके बिना तेरा काम बनेगा नहीं। क्योंकि चलते फिरते जो तू ईश्वर की याद करेगा वो आधे मन से याद करेगा, आधे मन से संसार के काम करता रहेगा, आधे मन से ईश्वर की याद करता रहेगा, तो तेरी बुद्धि में वो विवेक स्थायी नहीं रह सकता, ये निर्णय भी स्थायी नहीं रह सकता कि ये मनुष्य जन्म ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है। यदि ये काम है जीवन इस जीवन में नहीं कर सका तो पूरा का पूरा जन्म मेरा निरर्थक चला गया। इसीलिए संसार का महत्व तेरी बुद्धि में ज्यादा बना रहेगा, ईश्वर का कम बना रहेगा। सत्य यह है कि ईश्वर का महत्व मेरे जीवन में मुख्य होना चाहिए, संसार काम चलाने के लिए होना चाहिए। इसीलिए जो शारीरिक जीवन है इसको मां जी कहते हैं कि सादगी से व्यतीत करो। सादगी का मतलब होता है कि जीवन को फैलाने की बजाय जीवन को सिकोड़ने वाला काम। अभी अभी हम सुन रहे थे कि बड़े ब्यूटी पार्लर खुल गए हैं, पहले स्त्रियों को हुआ करते थे, पुरुषों के भी बहुत हो गए। तो अब बताइए सारा का सारा मेरा जो ये फैशन का अभ्यास है ये मुझे कहां ले जा रहा है? जिस मोह को मैंने तोड़ना था ये सारा का सारा फैशन उस मोह को बढ़ा रहा है, तो मैं पैसा खर्च करके मोह को गहरा कर रहा हूं, अज्ञानी बन रहा। तो जितना भी संसार का फैलाव है जो हम नकल करके आगे बढ़ रहे हैं इसमें, इससे गहरी अज्ञानता कोई नहीं है, इससे गहरी मूर्खता कोई नहीं, क्योंकि मैं जानकर कोशिश करके अपना समय और पैसा खर्च करके इस अज्ञान को खरीद रहा हूं जिंदगी की बर्बादी पर। इसीलिए ये जो देह है इसके अहंकार को बढ़ाना नहीं चाहिए, हर काम ऐसा करना चाहिए, इतने होश में करना चाहिए कि देह का अहंकार कम हो। हर वक्त इसलिए होश में रहना चाहिए यदि मेरी देह से किसी की सेवा बन भी जाए, किसी का कल्याण हो भी जाए, तब कहीं मेरे मन में यह भाव ना आ जाए कि मैंने इसका कल्याण कर दिया। क्योंकि मेरे बारे में सत्य है कि यदि किसी जीव का कल्याण कोई कर सकता है तो केवल वो ईश्वर है जो कर सकते हैं, मनुष्य को वो ताकत नहीं दी गई। मनुष्य को बस इतना ही कहा गया है तूने गुरु आज्ञा का पालन करना है, करने वाला गुरु ही। तेरे अंदर यदि कर्तापन आ गया कि मैंने किया तो सीधी सी बात है, कर तो यह देह रही है, जितने भी कर्म करोगे देह के द्वारा ही होंगे, और यदि मैंने किया यह भाव आया तो सीधा सा मतलब हो गया कि मैं देह हूं, यह भाव मेरा गहरा हो गया। तो इसलिए संसार में सेवा करते हुए भी कितना अलर्ट रहने की जरूरत है कि किसी भी तरह मेरे मन में यह भाव ना आ जाए कि मैंने किया। इसलिए हमसे कहा जाता है कि सदैव याद रखो कि तू करता तू हरता सर्व तरिया, कि प्रभु करने वाला तो ही है। यदि सेवा इन हाथों से बन भी जाती है तो प्रभु का धन्यवाद करो, हे प्रभु तूने ऐसा शुभ कर्म इन हाथों से करवाया, ये मेरा सौभाग्य। तो शुभ कर्म करने के साथ भी और शुभ कर्म करने के बाद भी तेरे अंदर यदि प्रभु की महिमा बनी रहती है, प्रभु की याद बनी रहती है, तब तो तूने सेवा की है, नहीं तो अपने ऊपर तूने राख ही डाली है, अहंकार ही बढ़ाया है, अपना मोह ही बढ़ाया है, उससे तेरा कोई कल्याण होने वाला नहीं है। यहां आकर ये बात समझ में आती है कि क्यों महाराज जी लिख रहे हैं कि देश भक्ति भी देह परायणता है। देश भक्ति आत्म परायणता कब होती है? जब देश भक्ति में निष्काम भाव से करने में सफल हो जाऊं, मेरी बुद्धि में ये ज्ञान बना रहे कि मैं देह नहीं हूं, जो कर्म फल का बंधन है उस कर्म फल के बंधन से मुक्त होने के लिए मैं देश की निष्काम सेवा कर रहा हूं, लोगों की निष्काम सेवा कर रहा हूं, ताकि मेरे अंदर से कर्म फल की कामना खत्म हो जाए। क्योंकि जितना भी मेरा स्वार्थ कर्म है वो कर्म फल की कामना रखकर मैं स्वार्थ कर्म करता हूं, और परमार्थ कर्म की विशेषता यही है कि वहां कर्म फल से कर्म फल पर मेरी निगाह नहीं होती, मात्र कर्म करने तक मैं अपने आप को सीमित रखता हूँ। इसीलिए कर्म करते हुए भी, कर्म करने के बाद भी मेरे अंदर प्रभु की याद बनी रहती है, उसका भजन निरंतर बना रहता है। तो ये मनुष्य जन्म इस देह के मोह से मुक्त होने के लिए, तो यदि हमने शास्त्रों के इस गहरे मर्म को नहीं समझा, पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं समझा, देह के नाश होने पर क्या बच जाता है, क्या मेरे संग जाता है, यदि इस बात का ध्यान मुझे नहीं रहा, तो ये मानव जन्म जीने में मैं लापरवाह हो जाऊंगा और ये जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हालांकि बात छोटी छोटी है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, लेकिन इस छोटी सी बात को समझने में पूरा मेरा पूरा जन्म बीत जाता है, तो मेरी बुद्धि का निर्णय फिर भी ठीक ठीक नहीं होगा। तो बात इतनी सी है कि ये देह ये जीव के लिए मंदिर है, ये देह ईश्वर की उपासना के लिए मिली, और वो प्रभु सातवें आसमान पर नहीं है, वो प्रभु इस देह के अंदर स्वयं मौजूद है। मां जी कहते थे, प्रेमी इस देह के अंदर जो जान है, तू जानता है कि रोम रोम में जान मौजूद है, एक बॉडी का सेल भी मृत नहीं है, उसमें जीवन है। तो इस देह के अंदर जो जान है उसको ही ईश्वर कहते हैं, उसको ही आत्मा कहते हैं, वो मौजूद है, लेकिन मुझको वो विधि पता नहीं कि मैं उस आत्मा को जानूं कैसे। इसीलिए गुरु धारण करना पड़ता है। गुरु फिर बताता है कि तू गुरु मंत्र का जाप कर और संसार में गुरु आज्ञा का पालन कर, और जो ज्ञान है तुझको दिया गया है, मैं देह हूं इस मोह को भंग करने के लिए, उस ज्ञान को तू सीख, उस ज्ञान को बुद्धि में रखकर जब तू प्रभु की याद मौन होकर अंदर करता है, तब एक दिन तेरे जीवन में ऐसा आ जाता है कि अंतर्यामी प्रभु तेरे अनुभव में आ जाते हैं, उनकी शक्ति अंदर प्रकट हो जाती है, तब तेरी असली भक्ति प्रारंभ होती है। क्यों? क्योंकि तब तुझको भरोसा हो जाता है कि जो गुरु ने कहा था वो सत्य है, वास्तव में मेरे रोम रोम में वो प्रभु का आनंद मौजूद है। तो फिर जब उस श्रद्धा से, उस अनुभव से, उस विश्वास से जब तू प्रभु की याद करता है, तो ये मां जी कहते हैं, प्रेमी अंदर का आनंद धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और एक दिन ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो गर्दन से नीचे का हमारा जो भाग है, इस देह का होश ही खत्म हो जाता है, ये जीव फिर ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाता है। ब्रह्मांड कहीं दूर नहीं, ये जो हमारा कपाल है यही ब्रह्मांड है। इसके अंदर जब ये बुद्धि स्थित होती है, उस समय ये प्रभु का जो आनंद है, ये इसका सागर उमड़ने लगता है, इतना आनंद होता है कि संसार और देह का होश पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। और इतना ही नहीं होता, इस देह और संसार में फिर उसको ईश्वर के अलावा कुछ नजर ही नहीं है, सारी सृष्टि में वो प्रभु ही प्रभु ही मौजूद है, उनके बिना इस सृष्टि का अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा बोध इस जीव को होता है। तब जाकर इसका मोह 100% भंग होता है, समाप्त होता है। उस स्थिति में सत्पुरुषों ने ये वाणी लिखी है, ये वाणी उच्चारण की है। तो जब मैं गुरु की बात मानकर, उसकी बात को सीखकर, मैं जब अपने मोह को तोड़ने की कोशिश करता हूं, सबसे पहले मैं ये स्वीकार करता हूं कि मैं देह नहीं हूं, देह की मौत के साथ मेरी मौत नहीं होती है, मैं बच जाता हूं, और मेरी जो सारी संपत्ति है मेरे मन में इकट्ठी है, वो मन भी बच जाता है। इसलिए मन को मैंने, मन के अंदर, मन रूपी तिजोरी में मैंने वो कमाई इकट्ठी करनी है जो अगले जन्म भी मुझको सुख दे, अगले जन्म भी मैं प्रभु भक्ति करने में सफल हूं। इस जन्म में यदि प्रभु प्राप्ति ना भी हुई तो कोई बात नहीं, यदि मैंने विवेक के साथ कमाई की तो ये जन्म मेरा सफल हो जाएगा, अगला जन्म भी मुझको मनुष्य का प्राप्त होगा, जहां आगे चलकर मैं प्रभु की प्राप्ति करके मानव जीवन सफल करूंगा। ओम ब्रह्म सत्य।
Thank you.